ओम शांति।
शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, हमें बच्चों को वर्षा देते हैं। वो वर्षा क्या है? हर एक पिता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अपने बच्चे को अपना वर्षा देता है। तो बच्चे को ही केवल वर्षा मिलता है। दुनिया में और जितने संबंध हैं वो लेने देने के हैं, लेकिन पिता और बच्चे का संबंध क्या है कि वर्षा के रूप में पिता की संपत्ति बच्चे को मिलती है। उसमें लेने का सवाल नहीं आता, पिता को देना ही है। तो हमारे पिता, परम पिता, हमको क्या वर्षा देते हैं? तो वो वर्षा है सुख और शांति का। सुख और शांति, शांति मैंने मुक्ति और सुख मैंने जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति में मुक्ति समाई हुई है, क्योंकि सुख में शांति समाई हुई है। मुक्ति शांति धाम में ही होती है सिर्फ, जीवन मुक्ति सुख धाम, जिसको हम सतयुग और त्रेता कहते हैं, उसमें होती है। वहां पर दुख का नाम निशान नहीं होता। आज भी दादी जी कह रही थी क्लास के बाद कि बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मुझे रावण राज में बुलाते हो, सुख धाम में, राम राज में नहीं बुलाते हो। बाबा की यही शक्ति है कि रावण राज में तो बाबा आ सकता है, लेकिन बाबा के राज में रावण नहीं आ सकता। तो बाबा का पार्टी ऐसा है, तो हमारे लिए बाबा आके रावण राज्य को परिवर्तित करते हैं और हमें सुख शांति का, सतयुग त्रेता का वर्षा देते हैं। ये वर्षा केवल बाबा के बच्चों को ही मिलता है और किसी को नहीं मिल सकता। और वर्षा लेने का बहुत आसान तरीका क्या, बस जन्म लिया और वर्षा मिला। जैसे माता पिता के संतान होती है, तो संतान कैसी भी हो, संतान लंगड़ी हो, अंधी हो, कमजोर हो, लेकिन जो ही संतान पैदा हुई तो वर्षा की अधिकारी हो जाती है। इसी तरह से बाबा कहते हैं सारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं 600 करोड़, उसमें से बाप का वर्षा किसी को नहीं मिल सकता, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो कोई सेठ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कोई हो, सिवाय बाप के बच्चों को। बच्चे तो सारे ही हैं शिव बाबा के, लेकिन जो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं, चाहे वो मुख वंशावली हो, चाहे वो संकल्प वंशावली हो, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा बनते हैं। क्योंकि वर्षा असल में दादे का होता है पोते के लिए, तो बाप बीच में पिता है, तो वर्षा शिव बाबा का है, थ्रू ब्रह्मा जिन जो बनते हैं उनको मिलता है, और वो सबको मिलता है सुख और शांति का, सतयुग और त्रेता का। कईयों को त्रेता का मिलता है, लेकिन त्रेता तक का वर्षा जरूर मिलता है, और द्वापर के बाद का रावण का वर्षा, बाकी सारे जितने दुनिया के लोग हैं जो बाबा को नहीं पहचानते उनको मिलता है दुख का। वास्तव में उसको वर्षा भी नहीं कहेंगे, अब बाबा कहते हैं वर्षा लेने के लिए जैसे बच्चा जन्म लेता है ऐसे ही आपने क्या किया। तो हमने केवल जैसे कल बाबा ने कहा मुरली में कहा था परसों कहा था क्या कहा था कि वर्षा लेने में क्या है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा बस एक सेकंड की बात है सौदा हो गया। उसमें मैं कैसा था कैसा हूं उसका कोई लिंक नहीं है। आपको स्वर्ग का वर्षा तो मिल ही गया। अब बाबा कहते हैं इस वर्षे की भी फिर गहराई है। स्वर्ग तो त्रेता को भी सेमी स्वर्ग ही कहते हैं, दुख का तो वहां भी नाम निशान नहीं है, सुख ही सुख है, प्रजा को भी सुख है, राजा को भी सुख है, तत्वों में भी सुख है, राम राजा राम प्रजा त्रेता के गाया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर और आ गए उस युग में तो फिर आगे देखना पड़ता है कि आ तो गए कौन से पोस्ट पर आए। जैसे यहां सब दुख ही दुख है, दुख में भी वर्षा है कि कोई मंत्री बन जाता है कोई एमपी बन जाता है। पहले तो लोग एमपी बनते हैं, फिर जब एमपी बन जाते हैं फिर सोचते हैं कुछ मंत्री बन जाए, मंत्री बन जाते तो सोचते हैं कोई मुख्यमंत्री बन जाए प्रधानमंत्री बन जाए। इसी तरह से जब त्रेता में भी आ गए चलो सतयुग में भी आ गए द्वापर से तो उठ गए भगवान के वर्षे में आ गए, फिर सोचते हैं आगे क्या है। जैसे बस में होता है ना पहले सोचते खड़े हो जाएं जगह तो मिल जाए खड़े तो हो जाएं बस में दाखिल तो हो जाएं, जब अंदर चले जाते हैं फिर क्या सोचते हैं कुछ बैठने की जगह ही मिल जाए। इसी प्रकार से फिर आगे चलो तो वर्षे में बहुत बहुत चीजें हैं, उसमें आपको अच्छा पद मिल सकता है, मेहनत करो तो राजाई मिल सकती है, राजाई भी त्रेता से लेकर सतयुग के शुरू तक की है वो भी मिल सकती है। फिर उसके लिए बाबा बताते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ता है। एक है अधिकारी वर्षे के वो सब हैं, एक है अधिकारी पद के तो वो पद फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एक है बाप का वर्षा एक है टीचर का वर्षा। तुम्हारी संस्था का क्या नाम है, हमारी संस्था का क्या नाम है, ईश्वरी विश्वविद्यालय है ना। तो बाबा सिर्फ सुप्रीम फादर तो नहीं है ना, सुप्रीम फादर के तौर पे तो उसने हमें वर्षा दे दिया सुख धाम में आ जाओ। अब सुप्रीम टीचर क्या देगा, नहीं तो फिर फादर ही रहता। इसलिए वो कहते हैं एक बाप के पांच छह बच्चे भी हों तो उनमें नंबरवार लियाकत के मुताबिक बाप को प्यारे होते हैं और बाप उनको लायक बनाते हैं। राजा भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। इसी प्रकार से उसमें वर्षे के लायक बनने के लिए ऊंचे वर्षे को अच्छी तरह से संभालने के लिए तो बाबा ने फिर पढ़ाई रखी है, और पढ़ाई भी बड़ी आसान है। जैसे जन्म लेना आसान है ऐसे पढ़ाई भी आसान है। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई बाबा कहते हैं कि सिंपल पढ़ाई है कि जो आपका अपना स्वरूप है, जो आपका अपना आप खुद नेचुरल कुदरती तौर पे हैं उसमें वापस आना है, और जो आपने इधर उधर से इकट्ठा किया है ऊपर से चीजें उसको छोड़ना है। हर चीज का दो रूप होते हैं, एक ओरिजिनल नया एक पुराना मिक्स हुआ हुआ बिगड़ा हुआ। तो बिगड़ा हुआ रूप कोई असली नहीं होता। मान लो मैं कहूं मैं बीमार हूं तो बीमार कोई असली रूप नहीं है, बीमार बीमारी से हुआ है, बीमारी निकल जाएगी तो असली रूप हो जाएगा। कोई कहता है इसके खून के अंदर कोई खराबी आ गई है तो खराबी असली रूप नहीं है, खराबी निकल जाएगी तो खून नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर पढ़ाई सिर्फ इतनी है, बाबा ने भी इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि आप सबके अंदर हम सब आत्माओं के अंदर शक्तियां हैं ही हैं। ऐसी बात नहीं कि शक्तियां हमने कोई इकट्ठी करनी है, शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां जो हैं वो दब गई हैं, कमजोर हो गई हैं। जैसे आग तो जल रही है लेकिन आग जोरदार नहीं है, इसी प्रकार से किसी के प्राण तो चल रहे हैं लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है, सांस भी चल रहा है, जान भी है उसके अंदर, लेकिन उसको कहो उठ जा, उठने में तकलीफ, चल पड़ तो तकलीफ, दौड़ना तो क्या है, उड़ना तो क्या है। इस वास्ते अब हमारी पढ़ाई क्या है, तो बाबा ने कहा है कि मैं आपको पिता के रूप में वर्षा देता हूँ, टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ, और पढ़ाई में क्या बताता हूँ कि कैसे आप अपनी शक्ति को पूरी कर लो, जिसको हम कहते हैं संपूर्णता। शक्ति तो है, संपूर्ण शक्ति, सर्व शक्तियों से मिली हुई शक्ति, ताकत, वो बाबा कहते हैं मेरी पढ़ाई से आपको मिलती है। अब ताकत कई तरह की होती है, एक तो होता बाहुबल, शरीर की ताकत, कई व्यक्ति शरीर से ताकतवर होते हैं, उनको बीमारी नहीं आती, कोई उनको लड़ता नहीं, उनको मार नहीं सकता। फिर कई धन से ताकतवर होते हैं, खूब पैसा है, वो भी एक शक्ति है। किसी के अंदर कोई गुण होता है, हुनर होता है, वो भी एक शक्ति है। ये सब, किसी का परिवार बहुत अच्छा इकट्ठा परिवार रहता है, वो भी एक शक्ति है। किसी के बड़े बड़े लोगों से संपर्क होते हैं, थानेदार वाकफ होता है, वो भी एक शक्ति है। संबंध संपर्क की शक्ति है, धन की शक्ति है, बाहुबल की, शरीर की शक्ति है, गुणों की शक्ति है, लेकिन ये सारी की सारी शक्तियां जिस्मानी है। बाबा जिस शक्ति की बात कहते हैं, जिन सर्व शक्तियों की बात कहते हैं, शक्ति सर्व शक्तिवान के बच्चे, तो वो शक्ति कौन सी है? अब परमात्मा को ही ले लो, सर्व शक्तिवान पिता, उसके पास कोई धन की शक्ति तो नहीं है, उसका तो शरीर ही नहीं है, कभी उसने 1000 का नोट रखा ही नहीं होगा, उसके पास रह नहीं सकता, छोटा सा तो परमात्मा है, इस वास्ते धन की शक्ति नहीं है उसके पास। अच्छा, कोई कहे बाहुबल की शक्ति है, उसका शरीर ही नहीं है, जो उसके अंदर कोई पहलवानी, कसरत, कुश्ती की बात हो, वो भी नहीं है। अच्छा, ऊंचे किसी से संपर्क रखे, वो सबसे ऊंचा खुद है, वो किससे संपर्क रखेगा? इस वास्ते जिन शक्तियों का हम नाम लेते हैं, पढ़ाई लिखाई की शक्ति है, अभी बहन जी ने बताया भाई साहब लॉ पढ़े हुए हैं, तो भगवान तो लॉ पढ़ा हुआ नहीं है, इस वास्ते वो कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। तो ये शक्तियों की बात बाबा नहीं करता, ये शक्तियों वाले दुनिया में बहुत हैं। कौन सी शक्ति की करता है? वो है वो शक्ति जो किसी के पास नहीं है, तभी तो आप वो बनते हैं जो कोई भी नहीं बनता है। इस वास्ते उसका नाम है आध्यात्मिक शक्ति, रूहानी शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। और क्योंकि आप आत्मा हैं, तो उस शक्ति को धारण भी आत्मा में ही करना होता है, इसलिए उस शक्ति को लेने के लिए पहली कंडीशन क्या है? जैसे कहीं पानी का नल बहुत अच्छा बह रहा हो तो बाल्टी तो चाहिए ना, जिसमें आप पानी भरेंगे। इसी प्रकार से वो आध्यात्मिक शक्ति किस में धारण होगी? आपके पॉकेट में धारण होगी, आपकी आंखों में धारण होगी, वो आपकी आत्मा में धारण होगी। इसलिए बाबा कहता है आप आत्मा हैं, पहली पढ़ाई ये है अलफ कि मैं आत्मा हूं। तो वो शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति, उसके भी बहुत सारे शक्तियों का मिक्सचर है। जैसे बाबा ने हीरा दिखाया कि हीरे का कमल था, और वो हीरा भी बहुत ज्यादा स्पॉटलेस, बिना दाग का था, तो हमेशा हीरे के अंदर सभी रंग चमकते हैं। कभी भी आप हीरा देखेंगे तो उसमें सभी रंग होते, सात रंगा होता है, वो होता सफेद है। इसी प्रकार से हमारे जो सर्व शक्तियां हैं, वो शक्तियों में से मोटी मोटी शक्तियां हमारे चित्रों में दिखाई हुई हैं, जिसको लोग अष्ट शक्तियां कहते हैं। कहते हैं ना, कम से कम है तो बहुत बाल बच्चे उनके, लेकिन मोटे रूप से 8 शक्तियां हैं। अच्छा, 8 शक्तियां भी कैसी हैं कि दोनों एक दूसरे के देखने में ऐसे लगेगा जैसे कोई कहे कि भाई लाल और पीला, लाल और नीला अलग अलग रंग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से संबंधित हैं। एक शक्ति कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी शक्तियां आपके अंदर में से एक शक्ति बहुत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं सुंदर व्यक्ति है, इसका शरीर बड़ा सुंदर है, तो ये तो नहीं कहेंगे इसका नाक ज्यादा सुंदर है, कान कम सुंदर है, टोटल कहेंगे। ऐसे कहेंगे ये भला मानस है, बहुत शरीफ व्यक्ति है, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि किसी के साथ शरीफ है, किसी के साथ लड़ता है, नहीं। इसी प्रकार से टोटल में शक्तियां एक जैसी रहती हैं, फिर भी एक जैसी रहने में भी आमतौर पे देखा जाता है, कोई कहते हैं ये व्यक्ति बहुत कम बोलता है, ये व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का है, तो ये फर्क क्यों हो जाता है? तो इसलिए हो जाता है कि जिस शक्ति को आप ज्यादा यूज करते हैं ना, प्रयोग में लाते हैं, वो ताकतवर दिखती है। दूसरी भी, जैसे आपके घर में छह शर्ट है आपके पास है छह की छह, लेकिन एक शर्ट है जिसको आप ज्यादा पहनते हो, तो लोग तो यही देखेंगे कि ये इस शर्ट में ये व्यक्ति दिखता है आमतौर पे, बाकी घर में पड़ी है, आप कभी कभी पहनते होंगे। इसी प्रकार से बाबा ने कहा है शक्तियां सब हैं, लेकिन प्रयोग करने से वो शक्ति कर्म में आती है, आपको व्यक्ति उसी शक्ति से जानते हैं। जैसे अवगुण है, मान लो किसी के अंदर जोश है, तो लोग उसको कहेंगे इस व्यक्ति में जोश है उसके अंदर और भी सारे अवगुण, लेकिन उसको यूज उसने जोश को ज्यादा करता है, इसलिए जो जोश उसका प्रधान हो जाता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि शक्तियां हमारी जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो जैसे स्कूल के अंदर सभी सब्जेक्ट में नंबर ठीक आने चाहिए, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ जाए उसमें 100 में से 100 मार्क्स आ जाए, और हिसाब में उसमें 100 में से 10 आ जाए, तो टोटल भी बिगड़ जाएगा और वो कंप्लीट भी नहीं गिना जाएगा। जैसे बाबा कभी एग्जांपल देते हैं, किसी व्यक्ति की एक टांग लंबी हो एक टांग छोटी हो तो कैसे चलेगा, दौड़ेगा कैसे, है ना? इसी प्रकार से कोई युगल होता है, एक बहुत मोटा एक बहुत पतला, तो फिर लोगों की नजर पड़ती है कि ये युगल फिट नहीं है, या एक बहुत ऊंचा एक बहुत छोटा। इसी तरह से अगर सब शक्तियों में हमारी कोई शक्ति ज्यादा यूज करने से ज्यादा ताकतवर हो गई है और किसी शक्ति का हमने कम यूज किया है, तो प्राय ऐसा भी होता है जिस सब्जेक्ट में व्यक्ति होशियार होता है उसको ज्यादा पढ़ता है, और जिसमें कमजोर होता है उसको पढ़ने को कहो तो उसको नींद आ जाएगी, उसका दिल नहीं करेगा। इसी तरह से जिस शक्ति के हम अनुभवी हो गए हैं उसी को ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं, और जिस शक्ति का हमें अनुभव नहीं है, उसको अनुभव में नहीं लाया है, उसको हम किनारे करके जो यूज वाली है उसको दूसरी की जगह भी यूज कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, जब आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, किसी के पास सिर्फ धन ही है, तो धन से क्या करता है, फिर धन से ही सारे काम निकालता है। किसी के पास बाहुबल है तो बाहुबल से धन का काम भी निकालता है, क्योंकि उसके पास है ही वो ज्यादा। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर जिस व्यक्ति में आजकल स्पेशलिस्ट सब है, किसी के अंदर किसी चीज की विशेषता है, किसी के अंदर किसी चीज की विशेषता है, उसका नतीजा क्या होता है कि उसको बाकी चीजों का अनुभव नहीं होता। जैसे घड़ी वाला घड़ी की दुकान लेके बैठा है, आप घड़ी ठीक कराने जाएंगे, आपको तो पता नहीं इसमें क्या नुक्स है, वो कहेगा जी इसमें ना 50 रुपए दे दो, है इसका कुछ, आपको तो पता नहीं, आप दे दोगे, क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट है, आप उसके स्पेशलिस्ट नहीं है। इसी तरह से आज की स्पेशलिस्ट दुनिया में कोई भी व्यक्ति कंप्लीट नहीं है, एक दूसरे का आधार लेते हैं, वो घड़ी वाला उसको ठगेगा, वो घड़ी वाला फिर उसके पास जाएगा डॉक्टर के, वो भी नब्ज देख के कहेगा हाँ 200 रुपए अलाओ फीस, तुम्हारी कुछ गड़बड़ है, वो उसको नहीं जानता। इसी प्रकार से सारा ही काम इस तरह चल रहा है। तो बाबा ने हमें विष्णु का वंशावली क्यों बनाया है कि आप कंप्लीट होने चाहिए, ऐसा नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। मुरली में बाबा ने कह दिया ये तो चोला है, बहन का है या भाई का है, लेकिन हो तो आप आत्मा, तो आत्मा को विष्णु का रूप भी इसीलिए दिया है, और अष्टभुजाधारी का भी इसीलिए दिया है कि कंप्लीट होना चाहिए, आपकी 8 भुजाएं हो, बाकियों में अस्त्र शस्त्र हो, अलंकार हो, 2 भुजाएं लटकी हुई हो नीचे, हैं? कई बार देखा ना किसी व्यक्ति की बाजू नहीं होती, یا کمزور ہوتی ہے تو اس کی شرٹ بھی ایسے بازو لٹکی ہوئی سی دکھاتے ہیں, تو وہ پھر کمپلیٹ تو نہیں گنا جائے گا نا. اور کام کرنے میں بھی جب اس کو کرنا پڑے گا کرم تو اس جگہ جا کے کمی ہو جائے گی. اس لیے سنگم یوگ پر اگر بابا کا آپ نے ورثہ دیکھنا ہو جو بعد میں آپ کو سکھ دھام کے روپ میں ملتا ہے, یا جو مکتی جیون مکتی کے روپ میں اس جیون میں بھی آپ کو انبھو ہوتا ہے, جس کو ہم فریڈم کہتے ہیں, انڈیپینڈنس کہتے ہیں, سوتنترتا کہتے ہیں, ادھیکاری پن کہتے ہیں, وہ ورثہ آپ کو شکتیوں کے دوارا ہی دکھتا ہے. دوسرے شبدوں میں پرماتما کے جتنے بھی گن ہیں وہ شکتیوں کے روپ میں ہی ہیں. مان لو پرماتما گیان کا ساگر ہے تو گیان بھی بہت بڑی شکتی ہے. کہا جاتا ہے نالج از پاور, نالج از سورس آف انکم. پرماتما پتا شانتی کے ساگر ہیں تو شانتی بھی ایک شکتی ہے. لوگ شانتی کو تو چراغ لے کر ڈھونڈتے ہیں, شانتی کہاں مل جائے گی, ساری دنیا میں گھومتے ہیں. پرماتما اس جتنی بھی چیزیں پرماتما کی ہیں وہ شکتیوں کے روپ میں ہیں, اور ہم لوگوں کو جو ورثہ ملتا ہے وہ شکتیوں کے آدھار سے ہی ملتا ہے. لیکن شکتی ورثہ نہیں ہے, شکتی ورثے کو لینے کے لیے ادھیکاری بننا ہے. جیسے بجلی ایک شکتی ہے, لوگ گھر میں بجلی لگواتے ہیں, کس لیے لگواتے ہیں؟ کہ بجلی سے پنکھا چلائیں گے, ہیٹر جلائیں گے, موٹر چلائیں گے, یہ کریں گے. آپ دیکھیں گے شکتی ایک ہے لیکن اس سے گرم بھی ہو سکتا ہے, ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے, مشین چل بھی سکتی ہے, مشین رک بھی سکتی ہے, اپوزٹ کام کرتی ہے. شکتی صرف ہو اور اس سے مشین ہی نہ ہو, آپ کے گھر میں پنکھا ہی نہ ہو, آپ ہیٹر ہی نہ لائیں, کوئی چیز ہی نہ یوز کریں, تو شکتی کس کام کی ہے؟ جیسے آتما ہے شریر نہیں ہے تو آنکھ نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے تو آتما خالی بیٹھی ہے. اسی طرح سے بجلی کا کنیکشن آپ نے لگوا لیا لیکن اس میں پنکھا وغیرہ نہیں ہے تو بجلی پڑی, یا پھر پنکھے لگوا لیے اور کنیکشن نہیں لیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس واسطے آپ دیکھیں گے ہماری ڈگریاں جو ستیگ میں ہیں وہ کیا ڈگریاں ہیں. ایک سمپورن آتما کی جیسے ڈگری ہوتی نا, بی اے ایل ایل بی وغیرہ وغیرہ, آپ کی کیا ڈگریاں ہیں؟ کون سنائیں گے ہماری ڈگریاں؟ جو تو ڈگریاں ہیں نا ساری کی ساری, وہ کیا ہیں؟ سروگن. ہاں ٹھیک ہے, یہاں سے ڈگریاں شروع ہوتی ہیں. یہ ڈگریاں بھی اور کسی کے پاس نہیں ہیں. سروگن سمپن, سولہ کلا سمپورن, سمپورن نروکاری, مریادا پرشوتم, اور اس کے آگے بھی کہتا ہے ہنسا پرمو دھرم. اچھا, اب ان ساری ڈگریوں میں شکتی کا نام ہے, گنوں کا نام تو ہے سرو گن سمپن. یہ کیوں نہیں کہہ دیا سرو شکتی سمپن؟ کہنا تو چاہیے نا بھائی, جب ہم شکتی کی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ستیگ میں شکتیاں گنوں کے روپ میں بدل جاتی ہیں. جیسے آپ نے ڈگریاں لی, اس کے بعد آپ کسی کام میں لگ گئے, کوئی ادھیکاری بن گئے, ڈگریوں سے ادھیکاری بنیں گے تو پھر ادھیکاری کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی, وہ تو بن گیا. اسی پرکار سے ہماری ڈگریوں کا پھل جو ہے وہ ہے گن, شکتی کا پھل ہے گن. تو واسطو میں ہمیں گنوان بننا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ سمپورن, لیکن بننے کا آدھار شکتیاں ہیں. اس لیے ستیگ میں شکتیوں کا ڈگری نہیں ہے, سنگم میں شکتیوں کی ڈگری ہے. آپ کا نام ہی شکتیاں رکھ دیا بھگوان نے. کیا تھے؟ ابلا سے سبلا, پانڈو سادھارن ویکتی سے پانڈو. تو پانڈو سے کون سی شکتی دکھتی ہے؟ انہوں نے تو لمبے چوڑے سائز بڑے کر کے ہتھیار دے کر پانڈو بنا دیے ہیں, لیکن پانڈووں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس دیو استر شستر تھے, اسروں کے پاس دوسرے تھے, ودھونس کاری تھے, اور ان کے پاس دیو تھے جو اکاٹے تھے, جس کا کوئی توڑ نہیں تھا. رام بان مشہور ہے نا, کہ رام کا تیر جو ہے وہ خالی نہیں جا سکتا, اور شنکر جی کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے اس کا گلا ہی کاٹ دیا جا کے, ہے نا. اس پرکار سے جو ایسے دیو استر شستر ہیں وہ شکتیوں کا ایک پرتیبمب ہے کہ یہ شکتیاں ہمارے پاس ہیں. تب بابا کہتے ہیں अभी बाबा ने कहा है कि मान लो दो शक्तियां हैं, एक है सहन शक्ति, एक है सामना करने की शक्ति। ठीक है, ये दोनों देखने में उल्टी लगती हैं। जो सामना करेगा वो सहन नहीं करेगा, और जो सहन करेगा वो सामना नहीं कर सकता। लेकिन वास्तव में ये दोनों शक्तियां अलग अलग हैं और अलग अलग समय पर उपयोग करने की है। तब बाबा कहते हैं कि हमें कहां सामना करना है, कहां सहन करना है। हैं दोनों शक्तियां आपके पास, अगर आपने गलत यूज कर लिया, जहां सामना करना चाहिए वहां सहन कर लिया, जहां सहन करना चाहिए वहां सामना कर लिया, तो काम बिगड़ जाएगा। कभी आपने बिजली में देखा होगा, अगर स्विच गलत लगा दो तो क्या होता है? अगर कोई बिजली के तार तोड़ के जोड़ने की कोशिश करे और उल्टा लगा दे, नेगेटिव को पॉजिटिव से लगा दे, पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा दे, तो क्या होता है कि शॉक भी लगता है, वहां से स्पार्क भी निकलता है और फ्यूज भी हो जाता है। इस वास्ते बाबा कहता है कि अगर जहां आपको सामना करना है वहां तो आप सहन करने लग गए, जैसे लौकिक है। बाबा कहता है लौकिक को अलौकिक में बदलो। आप में हिम्मत नहीं है लौकिक से, कुछ शर्मा रहे हैं, कुछ लोक लाज में आ रहे हैं, वहां पर ज्ञान की पॉइंट लगा रहे हैं, क्या लेना देना है रिश्तेदारों से, छोड़ो अपनी जायदाद भी क्या करनी है, आप हम तो बाबा के बन गए। तो क्या है, सामना करने की शक्ति नहीं है तो सहन कर रहे हैं, और जहां लॉ चलाना चाहिए वहां नहीं चला रहे, और फिर घर में आके अपने घर में लॉ चला रहे हैं, अपने घर में सामना कर रहे हैं, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? इस वास्ते बाबा कहते हैं कि अगर आपने शक्तियां सब हैं, लेकिन जिस समय पर जो शक्ति चाहिए उसकी बजाय दूसरी शक्ति यूज की, तो क्या होगा? आपकी एक तो खर्चा ज्यादा आएगा। मान लो आपके पास 5 का नोट है, 3 रुपए आपने खर्चे, और दूसरा कहता है या तो 3 लाओ नहीं तो 5 दे जाओ। कभी आप स्टाम्प लेने जाते हैं ना कोर्ट में, ऐसा ही होता है। कोर्ट में स्टैम्प पेपर छोटे नहीं मिलते, 2 रुपए का नहीं मिलता, तो वो क्या कहते हैं, चल भाई 5 रुपए ले ले, चल स्टाम्प दे दे, तो पैसा गया ना एक्स्ट्रा। अगर जिसके पास चेंज होता है वो पूरे का पूरा ही देता है। कि ऐसे ही स्कूटर वाले भी करते हैं, बाबू जी 8 आने नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे दोगे, नहीं तो 1 रुपया ही देना पड़ेगा। ये तो छोटी एग्जाम्पल है, लेकिन शक्तियों में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके पास कोई चीज प्रॉपर मात्रा में नहीं है या वो प्रॉपर चीज नहीं है तो आप दूसरी ले लोगे। दवाई भी लेने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई ये देना, ये सिबा की दवाई देना, वो कहता जी सिबा की तो नहीं है, किसी दूसरी गाजियाबाद की बनी हुई है ना। कई लोग वही ले आते हैं मजबूरी से, क्या करेंगे। इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूट हमेशा इन्फीरियर होता है। इस वास्ते बाबा कहता है कि आप अपनी शक्तियों को, प्रॉपर शक्ति को प्रॉपर वक्त पे यूज करना, यही हमारी स्मृति और योग की निशानी है। जिंदगी तो दुनिया में सब चला रहे हैं, क्या करते हैं? जब कुछ नहीं हुआ गुस्सा कर दिया, कुछ नहीं हुआ तो लोभ के वश हो गए, कुछ नहीं हुआ तो अहंकार में आ गए। आसुरी शक्तियां भी तो है ना, असुर लोग भी तो जिंदगी में काटते हैं ना, लेकिन वो आसुरी शक्तियों से काटते हैं और हमें दैवी शक्तियों से काटनी है। इसलिए हमारा नाम है अहिंसा परमो धर्मा। क्या मतलब? कि हाथ नहीं उठाना, हिंसा नहीं करनी, ये दिव्य शक्तियों के प्रयोग की निशानी है। गुस्सा नहीं करना और जोश में भी नहीं आना, और काम भी करना है। अब बाबा देखो, कई लोग कहते हैं यज्ञ में कोई गलती कर देता है तो कहते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं कहा इसको। मान लो बाबा बैठे हैं, कोई बेकायदे स्टेज पर चढ़ के आ जाता है, अच्छा तो क्या करेंगे? उसको मारेंगे तो नहीं, उठा के उसको फेंकेंगे तो नहीं? क्योंकि हमने अहिंसा परमो धर्म है, तो हमने दिव्य शक्तियों से काम को चलाना है। बाबा के बिल्कुल सामने भी आ जाएंगे तो बाबा क्या करेंगे? मुस्कुराते रहेंगे, है ना। उसको प्राप्ति कुछ नहीं होगी, वो समझेगा मैं आके कायदा तोड़ दिया। लेकिन हमारे वहां तो उसको मिसयूज नहीं, शक्ति को मिसयूज तो नहीं करेंगे ना। इसी प्रकार से कोई बहुत क्राउड भी कर ले हमारे सेवाधारी, उसको रोकने की कोशिश करें, तो भी आवाज उठा देते हैं, देखो सेवाधारी ने इसको जोर से बोला, जो कि एक्सपेक्ट नहीं करते कि दैवी स्थान पर इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाए। तो भाव क्या निकला कि हमें आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है। इसी को कहा जाता है हिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा से बाबा ने अहिंसक सेना से अहिंसक शक्ति से सारी रावण की राजधानी को जीत लिया। जीता किससे? दैवी शक्तियों से, प्रेम से, स्नेह से, सहयोग से, इन चीजों से। इस वास्ते हम कहें बड़ी गर्मी है, ओहो हो यहाँ बड़ी गर्मी है, ओहो बड़ी सर्दी है, अच्छा बड़े तंग आ गए हम, आज भोजन ठीक नहीं था, नमक ज्यादा था, फीका था, अच्छा है सिंपल बातें, लेकिन है क्या। और प्रकृति जीत गरीब जल्दी बनता है। मुझे, मैं सोच रहा था बाबा गरीब नवाज है, क्यों हम कहते हैं बाबा गरीब नवाज है। हर जो होता है, किसी भी कोई भी व्यक्ति होता है, उसको जो काम करना होता है उसके लिए जो आसान चीज होती है उसको यूज करता है, ठीक है कि नहीं। अगर आपने हल चलाना है तो आप नरम मिट्टी में चलाओगे ना, तो बाबा भी बड़ा चतुर है, उसको पता है कि गरीब जो है ना, उसको ना तो ज्यादा प्रकृति का है, बेचारे को कूलर नहीं है, उसके पास एयर कंडीशनर नहीं है, उसको अगर सर्दी में हीटर नहीं लगाना है, हीटर है ही नहीं बेचारे के पास, इसलिए क्या होगा कि वो आधा प्रकृति जी तो गरीब वैसे ही हो जाता है, क्योंकि उसको है ही नहीं, बेचारे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, गर्मी में भी रहेगा, सर्दी में भी रहेगा, भूखा भी रहने का आदि हो गया, ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के भी चलेगा, 10 व्यक्तियों के बाथरूम में नहा भी लेगा, लाइन में भी लग जाएगा, कपड़े लत्ते का भी फिक्र नहीं है, चल रहा है। इसलिए बाबा भारत में आ गया आराम से, कि कहीं लंदन वंदन में जाऊं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लोग जो हैं बड़े बड़े लग्जरी के आदि हैं, कार के बगैर चलते नहीं, उनके पैर सूज जाते हैं, फ्रिज से बगैर वो खाना नहीं खा सकते, उनको गरम गरम चीज चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। उनके घरों में जाओगे ना, दुनिया भर के सामान पड़े होंगे, ये वो कैमरा भी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आती, कैमरा ले लेते हैं, मेरे ख्याल एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद पड़ा रहता है, टेप रिकॉर्डर ले ले, हर चीज होगी उनके घर में, कभी यूज नहीं करेंगे। अच्छा, और भारतवासी जो हैं वो अपना आराम से चलते हैं, जब भूख लगी तब खाना बनाएंगे, और वो क्या करेंगे, 6 दिन पहले बना के फ्रिज में भर देंगे, 6 दिन वाला आज खाएंगे, आज का फिर फ्रिज में रख देंगे, उनका सिस्टम ही दूसरा उल्टा होता है। तब बाबा कहता है कि गरीब को अहंकार काहे का, अमीर को तो अहंकार है, आज मैंने नई ड्रेस सिलवाई है, फलानी दुकान से सिलवाई है, फलाने मॉडल की कॉपी करके पहले सिलाएगा, मेहनत करके फिर दिखाने जाएगा किसी को, घर में तो रखेगा नहीं, फिर उसको खर्चा करके बुलाएगा, आओ मेरे घर में पार्टी है, क्यों मेरी ड्रेस देखो, जैसे वो जुलाहा होता है ना, एक कहते ना, एक व्यक्ति ने सोने की अंगूठी बना ली एक जुलाहे ने, अब उसकी अंगूठी कोई देखे ही ना, तो उसने कहा सारा दिन बैठा रहा, उदास हो गया, मेरी अंगूठी नहीं किसी ने देखी, शाम को उसने अपनी झोंपड़ी को आग लगा ली। अच्छा, और जो व्यक्ति आए कहे आग कैसे लगी, तो ऐसे करके कहे, वो वहां से ना आग शुरू हुई थी, अंगूठी की तरफ ध्यान जाए लोगों का। इसी प्रकार से ये तो उसकी कहानी है, लेकिन ये अमीर लोग सब ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए बाबा कहता है कि उनको अहंकार भी होता है, लोभ भी होता है, आपस में कंपटीशन आ जाता है, ये कार लाया मैं दूसरी लाऊं। अच्छा, इस प्रकार से उनके अंदर सब विकार ज्यादा होते हैं, क्रोध भी आ जाता है, ईर्ष्या भी आ जाती है, मुरझाइश भी आ जाती है, गरीब को क्या है? है कुछ भी नहीं है, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, इसलिए वो बेचारा बचा रहता है। तब बाबा कहता है कि आधे प्रकृति जी तो होते हैं, कभी किसी गरीब ने कहा कि बड़ी गर्मी है, वो कहेगा खुदा का शुक्र है जिंदा तो हूं, कहीं भी रख दो, कुंभ के स्नान में चले जाओ, कुंभ में जो कहते हैं 80 लाख लोग आए स्नान किया, उसमें कितने अमीर होते हैं, अमीर क्या तसल्ली कर लेते हैं, गंगा जल घर में भी आता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो ठंडी ठंडी में भी जाएंगे, इस वास्ते बाबा गरीब नवाज है। तो हमें हर चीज में अपनी विशेषता देखनी चाहिए, कोई समझते हैं गरीबी खराब चीज है, नहीं, गरीबी बहुत अच्छी चीज है, और वैसे भी कहा गया कि दुख में सब सिमरन करते हैं, और दुख होगा गरीबी होगी तो सतयुग का अच्छा लगेगा, अमीर क्या कहेगा मैं तो यही सतयुग में हूं, तो धोखा खा जाएगा ना। इस वास्ते बाबा कहता है कि प्रकृति जीत मैंने छोटी छोटी चीज में अपने आप को साधना, कि भाई कुछ भी है उसमें समझो मेरा टेस्ट है। ऐसे नहीं समझो, मान लो आपको खाना नहीं मिला, कोई चीज कम हो गई, दूसरे के पास आ गई, आपकी टर्न आई तो खत्म ही हो गई। मान लो पकौड़ी बनी थी ना उस दिन भोग वाले दिन, तो पकौड़ी खत्म हो गई, आपके लास्ट तक आके खत्म हो गई। अब आप हाय हाय मुझे पकौड़ी नहीं मिली, अच्छा है तो दो पैसे की चीज, लेकिन आप प्रकृति जीत से फेल हो गए। अगर आपने कह रहे अच्छा नहीं मिली, पेट दर्द नहीं होगा, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, आप खुश हैं। इस वास्ते हर चीज में, ट्रेन में सीट नहीं मिली कोई बात नहीं, जो सीट लेने की कोशिश करते हैं ना उतना सुख उनको सीट का नहीं होता जितना परेशानी सीट बुक करने में होती। चार दिन से लगे रहते हैं मेरी सीट नहीं हुई, मेरी उधर मुरली चल रही, उधर कहेंगे मैं अपनी सीट का तो पता कर रहा हूं, हाय मेरी सीट नहीं हुई, हाय मेरी सीट नहीं हुई। तब बाबा कहता है कि हो जाए अच्छा, ना हो जाए तो भी अच्छा, आपको उसमें सहनशीलता आ जाएगी, कोई बात नहीं। दुनिया में लोग जाते ही हैं, ऐसी परिस्थिति आती है जब हम सीट वीट नहीं देखते, ऐसी भी परिस्थिति आती है दुनिया में। अगर मान लो कोई कह दे यहां बम फटने वाला है, आप सड़क पर नजर आएंगे, जूता भी नहीं पहनेंगे, क्यों आप नंगे पांव क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आप सोल कॉन्शियस हो गए ना। इसी प्रकार से हर परिस्थिति में समान रहना, ये नहीं अच्छे सेंटर में गए यहां बड़ा सुख है। कई ऐसे भी होते नई नई टीचर बनती हैं, बड़े सेंटर में जाकर उनको ट्रेनिंग दी जाती, सब साधन है सुख है, फिर उनको कहते हैं जाओ फलाने छोटे सेंटर में जाके चार्ज लो, ओहो हो ये तो बड़ी तकलीफ की जगह है। तो तब बाबा कहता है ये गड़बड़, इस वास्ते बिल्कुल छोटे से चलो, फिर अच्छा हो जाए उसमें भी फंसो नहीं, तब आप सुखी रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है शरीरी बनो। आप सोचिए कि भगवान को हम कलयुग में बुला लेते हैं, कितनी बड़ी हस्ती है, देवताओं को भी बढ़ाने वाला, और उसको कौन सी दुनिया में, कौन से रथों में, कौन से लोगों के सामने, कौन से वायुमंडल में बुला लेते हैं। उसने कभी कहा बाबा, कभी देखा मुस्कुराहट बाबा की कम हो जाए कि बच्चे ये नुकसान हो गया, आज यहाँ टेंट लगाया था, टेंट के ऊपर तो पानी गिर गया, कितना नुकसान हो गया। बाबा हानि लाभ में बराबर है। इसी वास्ते प्रकृति जीत अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, हम अधीन रह गए, अधिकारी नहीं हुए। और प्रकृति जीत बनने से प्रकृति को आप स्वतः प्रधान बनाएंगे। हमेशा शत्रु पर जीत पहनने से विजय कहलाता है। बाबा ने कहा है सांप जो है, सांप के ऊपर आपको डांस करना है, ना कि सांप आपके ऊपर डांस करे, आके आपको डराना शुरू कर दे, आपके सामने आके आप कहें मरा अभी मरा, सांप जी महाराज माफ करो पीछे हो जाओ, ऐसे नहीं। इस वास्ते एक बार आप एक सब्जेक्ट को जीत लेंगे आपको दोबारा नहीं जीतना पड़ेगा, ये भी बात है। आपने छठी का इम्तिहान पास कर लिया, उसके बाद आपको कभी जिंदगी भर छठी का इम्तिहान देना पड़ेगा नहीं। हाँ सातवीं का भी इम्तिहान है, उसके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जब आपने सातवीं का पास कर लिया फिर आपको सातवीं का नहीं देना पड़ेगा। हमारी परीक्षाएं अंत तक हैं, लेकिन जिस परीक्षा को आप जल्दी पास कर लोगे उतनी आपके अंदर ताकत आ जाएगी। बीए पास को एमए पास करना आसान है, मैट्रिक वाले को एमए तो कहेगा पहले बीए तो कर लूं, है ना, इसी हिसाब से चलता है ये। तब करके बाबा कहता है प्रकृति जीत, उसके बाद माया जीत तो आपको पता ही है। अच्छा फिर संस्कार और स्वभाव, ये बड़ी चीज है क्योंकि इसमें इसके साथ मैं जुड़ा हुआ। जब हम कहते हैं ना मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, भाई मेरे से तो ऐसी दिख, मेरे से नहीं ये होता, हम कहते हैं कि नहीं मेरे को वहां बड़ी तकलीफ है, यहां मुझे बड़ा सुख है, तो ये जो मैं वाला संस्कार है ना ये मेरा है। तब वो बाबा कहता है कि बाबा के देखो कि हमें ब्राह्मण तौर पे जिसको हम ब्रह्माचरण कहते हैं, ब्रह्मचर्य कहते हैं, कहा गया ना ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मा मुहूर्त, उसको लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म भोजन, ब्रह्म ज्ञान कह दिया है। तो ब्रह्मा बाबा को देख करके उसके संस्कार, फॉरेनर को भी बाबा ने कहा फॉरेन कल्चर नहीं ब्राह्मण कल्चर, तो ब्राह्मण कल्चर सिंपल है, देना, दातापन के संस्कार लेने के नहीं। तो आप जब देने का संस्कार रख लोगे ना, आपको लेना पड़ेगा ही नहीं। कई समझते हैं लेना जरूरी है। आप किसी हलवाई को कहो मिठाई खा, वो खाएगा? हलवाई हलवाई को कहो तू मिठाई खा, उसको डब्बा मिठाई का दे दो जाके, वो क्या करेगा? वो कहेगा ये तुम, मैं तो मिठाई से तंग हूं। ठीक है ना? इसी प्रकार से आपको, आप में से किसी को भी टोली खाने का बहुत शौक हो, मुझे बहुत शौक था, एक की जगह दो टोली खा के मैं बहुत खुश होता था। हमेशा सोचता था कभी दीदी डबल दे देना, मैं सोचता था भी वाह वाह मुझे डबल मिलती है। फिर मैंने देखा ये दादियां क्यों नहीं खाती टोली, हम तो खाते हैं, उनको दो जरा सा खाती हैं, वो भी संतुष्ट हैं, हम तो डबल खा के संतुष्ट हैं, इसका कारण क्या है? फिर हमने देखा कि एक दिन हमें कहा सारी क्लास को टोली बांटो। पहले तो मुझे बड़ा देह भान आया, शांति स्तंभ पे सब बहन भाई खड़े थे, दादी जी विदेश जाने वाली थी, तो टोली आई बांटने के लिए, तो मुझे कहा टोली बांटो। मैं समझता था ये किसी कुमारी वगैरह को बांटनी चाहिए, किसी छोटे भाई को मैं क्यों बांटू, मैं तो ऑफिसर हूं। पहले मुझे लगा कि मैं नहीं नहीं, मैं चुप खड़ा रहा। उन्होंने कहा टोली बांटो, मैं खड़ा रहा। फिर दादी ने ऐसे मुझे देखा पर चांस, तो मुझे जोर से झटका लगा, ये जैसे कोई उसमें शक्ति थी दादी में। मैंने चुपचाप वो थाली ले ली जैसे कठपुतली लेती है, और मैं टोली बांटता गया बांटता गया बांटता गया। उसके अंत में मैंने देखा सबको टोली बांधने के बाद मेरी टोली खाने की इच्छा ही नहीं हुई। बांटने में इतनी खुशी हो गई जैसे माँ अपने बच्चे को खिला के सेटिस्फाइड हो जाती है ना, इसने खा लिया। माँ बच्चा खाता है तो माँ अपना मुंह चलाती है, बच्चा खा रहा है, इसी प्रकार से वो तसल्ली होती है। तो हमने ये नोट किया कि देने से आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो संतुष्टता की मंत्र है देना। आप लेने से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, लेते जाओ और बढ़ता जाएगा इच्छा, और करोड़पति कहेगा अरबपति हो जाऊं। आप देना शुरू कर दो, आप लखपति भी होंगे, आप संतुष्ट हैं। इसलिए ये हमारी जो ब्राह्मण कल्चर है, जो देवता बनते हैं, और देने के अंदर लेना समाया हुआ है, क्योंकि आप संपूर्ण होंगे तो देंगे ना। वो आपने देखा होगा जब कभी ये ग्रह होता है ना, चंद्र ग्रहण वगैरह वगैरह, उस समय भी वो दान मांगते हैं और कहते हैं उसी चीज का दान करो जो आपके पास नहीं है। तो जो चीज आपके पास नहीं होती देने से वो पूरी हो जाती है। मान लो आप क्रोध है और जाके प्रदर्शनी में समझाते हो क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, क्रोध विकार है, तो कुछ दिन बाद क्या होगा? आप कहेंगे मैं दूसरों को कह रहा हूं, आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्रोध नहीं करना। इसी वास्ते ये हमारा ज्ञान में देने का है। तो सारी शक्तियां देने से, यूज करने से आएंगी। मान लीजिए कि मैं अपने शहर में, एक अमेरिका में हम गए थे, तो एक व्यक्ति यहां हमारे भाई आता था परिवार, वो दिल्ली पांडव भवन में रहता था। हमें क्या पता कौन है, बहुत सारे अंग्रेज आते हैं, हम उनको हॉल में सुला देते थे सबको, सो जाओ हॉल में, उस वक्त जगह भी कम थी। वहां जब मैं अमेरिका में गया तो मैंने देखा वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वहां उसके पास कार है। साउथ अमेरिका में गया, बहुत बड़ा घर है, उसने मुझे दो तीन दिन घुमाया फिराया, तो मैंने देखा कि हम तो इनको पता ही नहीं था इनका ऑक्यूपेशन कौन सा, बेचारा इतना रॉयल व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से एक रॉयल व्यक्ति किसी विदेश में या किसी सेंटर में बहुत धन से सहयोगी है, उसको नया नया निकला है, उसको टीचर कहती तो मधुबन चलो मधुबन चलो, वहां तो दर्पण है, वहां तो हमारे बड़े बड़े रहते हैं, और तुम जाओगे ना तुम्हारा जीवन में 7 दिन में इतना परिवर्तन हो जाएगा जितना यहां साल भर में नहीं होगा पुरुषार्थ करने से। वो व्यक्ति आ गया और आते ही मान लो खड़ा हो गया रिसेप्शन पर, और रिसेप्शन वाला चाय पीने गया हुआ है, और वो व्यक्ति खड़ा अपना सामान लेकर के, तो उसके मन में क्या आएगा? और देखो कहते थे मधुबन तो दर्पण है, यहां तो आते ही इतना थका हुआ मैं आया हूं, और सामान कमरा अलॉट करने वाला ही नहीं है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को है, और वो जानते ही नहीं मैं कौन हूं, सारा सेंटर तो वहां मैं चलाता हूं है, उसको परिचय भी नहीं, मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया। इससे तो अच्छा था मैं ना आता, वहीं मुरली सुन लेता है, कल को पढ़ लेता। उसके अंदर ये संकल्प भी आ सकता है। इससे क्या होगा, एक उसकी सहन शक्ति जो थोड़ी बहुत है वो भी घटेगी, व्यर्थ के संकल्प भी चलेंगे। अगर वो व्यक्ति ये सोचे ارے میں تو یونیورسٹی میں آیا ہوں، میرا تو کالج ہے اور یونیورسٹی میں تو پریکشا ہوتی ہے، میرے ٹیچر کی بھی پریکشا ہوتی ہے، یہاں تو میری تو گیٹ پر ہی پریکشا شروع ہو گئی، دیکھو یا ہو سکتا بےچارا کوئی ویٹ کرتا رہا ہو، میری گاڑی لیٹ آئی ہو، ابھی چائے ویٹ کر کر کے اب چائے پینے گیا ہو، کوئی بات نہیں، میں سارا دن کھڑا رہوں گا، کوئی بات نہیں، میرا پیپر ہے، میں نے پاس کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی سہن شکتی بڑھنی شروع ہو جائے گی، جیسے بیٹری کا میٹر ہوتا ہے نا، ڈسچارج ہوتی ہے تو ادھر کو جاتا ہے، چارج ہوتی ہے تو ادھر کو جاتا ہے۔ اس واسطے آپ اپنا رخ چینج کریں گے کہ میرا پیپر ہے، یہ نہیں سوچیے پرستھتی آئی، تبھی بابا کہتے پرستھتیوں کو پاس کرنا، یہ بھی آپ کا ایک ٹیسٹ ہے۔ اور پرستھتیاں بنتی ہیں واتاورن سے، آپ نے اپنے من میں واتاورن یوگ کا نہیں رکھا ہوا، پاورفل نہیں بنایا ہوا، موقع کے اوپر وہ گیان کی پوائنٹ جو دوسروں کو بھی سناتے ہیں وہ نہیں ایمرج ہوئی، تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ جیسے ہتھیار ہوتے ہیں، ہتھیار کا یوز بھی پراپر ہونا چاہیے، آپ کے پاس توپ بھی ہے اور پسٹل بھی ہے، اور آپ نے کیا کیا کہ جب دور سے دیکھا مایا آ رہی ہے تو پسٹل چلانا شروع کر دیا، تو گولی تو اس کی یہاں تک ہی جائے گی، مایا اور تیزی سے آ جائے گی، پھر آپ ڈر گئے، ارے مایا بہت نزدیک، آپ نے توپ چلا دیا تو اس کے سر سے گزر کر نکل گیا، مایا نے آپ کو پکڑ لیا۔ تو آپ نے دونوں ہتھیار چلائے، رونگ چلائے، جب توپ چلانا چاہیے تھا تب پسٹل چلا دیا، گولیاں خراب کی، جب پسٹل چلانا چاہیے تھا تو توپ چلا دیا، گولا خراب کیا اور پھنس بھی گئے۔ اس واسطے ہمیں پراپر ٹائم پر پراپر شکتی کا یوز کرنے سے، جہاں سہن شکتی یوز کرنی ہے وہاں سامنا کرنے کی نہیں یوز کرنی ہے، ہو سکتی ہے آلٹرنیٹو، کوئی سامنا نہیں کر سکتا بےچارہ کیا کرے گا، سہن کرے گا، لیکن کیوں نہیں کرے؟ اور یہ بھی نہیں کہ بہت ٹائم سہن کرتے رہو، پھر جب تنگ آ جاؤ تو پھر سامنا کی زور سے، پھر بہت زور سے وہ فورس سے نکلے گی۔ کبھی کوئی ویکتی بہت زور سے شکتی یوز کرتا تو گر بھی جاتا ہے۔ اس واسطے بابا کہتا ہے بیلنس، شروع سے ہی جیسے کوئی بھوجن بناتا اس میں ہر چیز پراپر ہونی چاہیے، نمک بھی پراپر ہونا چاہیے، نہ کم نہ زیادہ، اسی پر جلا اس کا ہیٹ بھی پراپر ہونی چاہیے، تو ہر چیز کا پراپر یوز یہی سمرتی کا ثبوت ہے۔ تب بابا نے کہا ہے کہ سمرتی خالی یوگ لگانا نہیں ہے، ہم یوگی تو ہیں، ہم کرم یوگی ہیں، تو سمرتی کو یوز، ہماری سمرتی کا پروف ہی کیا ہے اگر ہم اپنی شکتی سے ہی چل رہے ہیں سادھارنتا سے؟ اچھا، تو اگر ہمارا ثبوت نہیں ہے، میں نے 10 منٹ لیٹ شروع کیا تھا، پورا جلدی کر دیتا ہوں۔ اچھا، تو ثبوت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو روپ میں لائیں، اور روپ میں لا کر کے اور اپنا اس کو یوز کریں۔ کیونکہ ایک ویکتی تھا وہ دفتر لیٹ آتا تھا، ہے تو انہوں نے کہا تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو کہتا چلا بھی تو جلدی جاتا ہوں نا، ہے اس لیے ایسا نہیں کرتا، میں یہی پورا کرتا ہوں۔ اوم شانتی۔